ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय पालना का इस योग भक्ति में अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव हुआ ना आपको अभी? बहुत अच्छा। अभी हमारी इस भक्ति में मौजूद है अत्यंत अनुभवी बाबा की बहुत पुरानी पंजाब जोन की और सारी ईश्वरी परिवार की स्नेही एक कुशल वक्ता आदरणीय राजयोगिनी अनीता बहन, हम आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी तो अवश्य इनसे परिचित होंगे ही, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ कि आप पंजाब जोन की कुछ सीनियर वरिष्ठ बहनों में से एक हैं। वर्तमान समय चंडीगढ़ में जो सेक्टर 15 में सेंटर है उसका आप संचालन कर रही हैं। सोनीपत रिट्रीट सेंटर जहाँ पर समय प्रति समय भट्टियों का आयोजन होता है, विंग से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वो हमारे अमीरचंद भाई साहब, उनके साथ आप पूर्ण रूपेण सहयोगी बनके उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर हमारा पंजाबी प्रोग्राम उसके रिले होता है, पंजाबी के आप प्रोग्राम्स देते रहते हैं, आप में से बहुत भाई बहन सुनते भी होंगे। मधुबन में भट्टियों का आयोजन होता है, टीचर्स ट्रेनिंग का आयोजन होता है या अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी आप अपना पूरा योगदान देते रहे हैं और दे रहे हैं और उनमें हर वर्ष सम्मिलित होते रहते हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी, हमारी सखी है अनीता बहन। तो आज का जो हमारा विषय है वो है योग का व्यवहारिक स्वरूप। हम सब प्रवृत्ति में रहते हैं, कभी कभी ज्ञान और योग वो हम उसको अलग कर देते हैं और जो हमारा प्रवृत्ति है उसको हम अलग कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो वो क्या उसका व्यवहारिक स्वरूप है, आज हमारे सामने इस बात को लेकर हमारी आदरणीय अनीता बहन यहाँ पर आई है। मैं ज्यादा समय न लेकर आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप इस विषय को स्पष्ट करें, योग का व्यवहारिक स्वरूप।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक भट्टी नीचे चल रही है अधर कुमार और कुमारों की, फिर भी लुधियाना वालों ने बाबा की गोद में अपना चांस लिया है। पांडव भवन आके बैठना माना बाबा की गोद में बैठना। आजकल तो ये किसी किसी का लकी ड्रॉ निकलता है, तो आप सबका भी ड्रॉ निकला है, लॉटरी निकल आई है। बहुत बधाई हो इस लॉटरी की। मैं समझती हूँ पूरा लाभ लिया होगा इस चांस का, पूरी तपस्या कर रहे होंगे और तपस्या करके जब वापस घरों में जाएंगे तो इस तपस्या का जलवा जरूर दिखाएंगे। कोई एक योगी अगर कुछ सालों किसी गुफा में तपस्या करे फिर शहरों में जाए और लोगों को मालूम हो कि ये इतना समय किसी गुफा में तप कर आया है, तो उसे किन नजरों से देखेंगे, किन नजरों से देखेंगे? जैसे कोई अवतार आया है, जैसे कि ये बस हमें भगवान से मिला देगा, बस इसके संग से हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये जिस घर में चरण डाल दे वो घर शुद्ध हो जाएगा, ये जिसके सिर पर हाथ रख दे उसकी मुक्ति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में भी स्थूल रूप से कोई गुफा में घर से भागा हुआ भी रह के जाए उसकी भी इतनी वैल्यू होती है। और हम तो सच में भगवान के दर पर आए हैं, उसकी गोद में आकर बैठे हैं और तप रहे हैं, तप रहे हैं ना, तप रहे हैं, गल रहे हैं। तपना गलना माना चेंज, क्योंकि अब सारे विश्व में अपना विद्यालय मेडिटेशन के लिए, शांति के लिए, सच्चाई के लिए, महानताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया। अब जैसे कि हमारा मार्ग चलता है ब्रह्मा कुमारी, माना शांति, सच्चाई, पवित्रता, ये चल रहा है। ऐसे टाइम पर हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। जैसे कोई कंपनी अगर बहुत प्रसिद्ध हो जाए, उसका प्रोडक्ट बहुत फेमस हो जाए, तो उस कंपनी को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, भले उसके दाम घटाने पड़े, प्रॉफिट घटाना पड़े, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल करते। तो एक टाइम था जब हम दुनिया को सिद्ध करते थे बार बार कि आप जैसा हमको समझते हो हम वैसे नहीं है, आप समझते हो ये भगाते हैं, सुरमा डालते हैं, जादू करते हैं, इनके यहाँ तो ऐसा होता है, बहुत दुनिया के अंदर इल्यूजन्स थे। तो हम उसको सिद्ध करने में लगे हुए थे, नहीं आप बुरा समझते हो, हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। और अब का आवाज क्या है, अब उन्होंने जितना हमें अच्छा स्वीकार कर लिया है, अब उसके सबूत की जरूरत है। ऐसे सबूत जो बाबा के महावाक्यों को सिद्ध कर दें। बाबा के महावाक्य थे एक साकार मुरली में, बच्चे तुम सब मिलकर के सरकार के पास जाओ। क्या करने जाओ? सरकार को जाकर बताओ कि हम बीके अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। सरकार के पास जाओ। अभी तक शायद कोई गए नहीं है, पर बाबा के महावाक्य, समझो हम चले जाएं सरकार के पास और गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय भारत को स्वर्ग बनाकर छोड़ेगा, तो कोई भी बात के डिक्लेरेशन के लिए कुछ प्रूफ्स चाहिए होते हैं ना, कि कैसे ये बना के छोड़ेगा, तो कुछ लाखों घर दिखाने पड़ेंगे ना। देखो इस ज्ञान से, योग से इतने घर स्वर्ग बन गए, अब ये भारत को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, प्रूफ्स चाहिए ना। चंडीगढ़ में बहुत सालों पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की युगल कोर्स करने आने लगी, थोड़े दिन हुए थे उसको, बीच में राखी आ गई, तो भाई साहब नहीं आते थे और राखी बांधने बहने उनके पास गई। जरूरी बात है उनको राखी बांध कर ये भी कहेंगे आप भी आओ, मेडिटेशन कोर्स आपके युगल कर रही है, आप भी आया करो। तो उनका जवाब था पहले ये सीख ले मेडिटेशन, मैं तब आऊंगा, अभी तो ये ओम शांति में जा रही है ना, मैं तब आऊंगा जब ओम शांति हमारे घर आ जाएगी। और थोड़े दिनों बाद वो कोर्स करने उसके साथ आने लगे और आकर के बोले अब शांति हमारे घर आ गई है, इसलिए मैं भी आ रहा हूं। तो योग में हम कितने घंटे बैठे, सीधे बैठे, आंखें खोल खोल कर बैठे, दृष्टि अच्छी ली, अच्छे अनुभव सुनाए, मजा आ गया, कहा हम पवित्र भी रहने लगे, अन्न भी शुद्ध खाने लगे, भगवान के कार्य में धन भी लगाने लगे, बाबा के घर महीना महीना रहकर सेवा भी करने लगे, अपने घर के कामों से टाइम निकालकर सेंटर पर भी बहुत सारी सेवा करके जाने लगे। दुनिया को इससे क्या मिला, दुनिया को इससे क्या मिला? मैंने योग में बैठे बैठे अंदर क्या किया, दुनिया को क्या मालूम? मैंने धन भंडारी में डाल के अपना भविष्य बनाया, किसको क्या पता? पवित्र बने हमने, ब्रह्मचर्य धारण किया, किसको क्या मालूम? अन्न शुद्ध खाने में तो बहुतों को तकलीफ भी हो गई कि आप हमें शूद्र समझते हो, हमारे घर का नहीं खाते हो, हम इकट्ठे पार्टी में जाते थे, मिलके खाते थे, घूमते थे, अभी ये क्या हुआ, आप तो कट गए हमारे से, लोगों को क्या मिला? हम इतने से ही समझ बैठते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, बड़े 30 मार्का हो गए, लेकिन जो सब्जेक्ट दिया ना, योग का व्यवहारिक स्वरूप, योग का दर्शन, इन बातों पर इम्पैक्ट है। योग बल के बिना ये बातें भी नहीं है, लेकिन योग का रियल इम्पैक्ट चाहिए, दिव्य गुणों की धारणाएं। अज्ञानियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा, बाहर ऑफिस में कैसा, बच्चों के साथ कैसा, पड़ोसियों के साथ, रेड़ी वाले रिक्शा वाले के साथ कैसा, काम करने हमारे घर में जो माइयां आती है सर्वेंट्स है उनके साथ कैसा। अकेले जहां और कोई नहीं मुझे देख रहा, वहां मेरा मेरे साथ व्यवहार कैसा, वहां हमारे योग का दर्शन होता है कि हमने अकेले बैठकर अंदर भगवान से जो बात की थी उसमें मैंने भगवान से क्या पाया, क्या उसने मुझे दे दिया, इसका दर्शन वहां होगा जहां कोई मुझे गाली दे रहा है, जहां कोई मेरी बात नहीं मान रहा, जहां मेरी चॉइसेस नहीं पूरी हो रही। चलो आप शुद्ध खाते हो, आपको बिना प्याज लहसुन का चाहिए, आपको भोग लगाया हुआ चाहिए, ठीक है, पर आपके घर के चार लोग उसी बात पर आपको टॉन्ट करते, कमेंट करते, कभी बनाने देते, कभी नहीं बनाने देते, कभी भोग लगाने देते, कभी नहीं लगाने देते, इस हाल में आपको क्या करना चाहिए? कुड़कुड़, चिड़चिड़, हाय आय या खुश स्टेबल निश्चिंत, एक बार नहीं खाया तो कोई बात नहीं, नहीं बनाने दे रहे तो कोई बात नहीं, प्याज जरूर डालने को बोलते हैं, चलो उनके लिए डाल देते हैं, हम दही से खा लेंगे कोई बात नहीं, चाय से खा, हर एक बात में कितना हम स्टेबल है। माना वो गलत कर रहे हैं, माना उनको सच्चाई समझ नहीं आ रही है कि आप सेंटर रोज जाकर कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, जो एक घंटा आप ईश्वरीय पढ़ाई में लगा के आते हो, उससे अंदर शक्ति भरते हो, आपके अंदर खुशी आती है, आपको शक्ति आई, आपको खुशी आई, इसका प्रमाण क्या है? जब वापस जाकर डांट पड़े तो गाली खानी पड़े, वहां पता चलेगा कि आपको शक्ति आई कि नहीं आई। किसी किसी ने समझ लिया कि वो गलत है ना, जो समझते ही नहीं है, ज्ञान सुनते ही नहीं है, मेरी मानते ही नहीं है। मैंने कितनी बार बोला आप भी टीवी ना ऊंचा चलाया करो, वो सुनते ही नहीं है। अरे जो सुनते नहीं है उनको आप सुनाते क्यों हो? वो सुनते नहीं है ना, तो ना सुनने वाले को सुनाना बाबा ने कहा हुआ है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो जो नहीं जाने उसको क्यों खिलाते हो? जरूरत नहीं है ना। तो वास्तव में योग स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है, एक साइलेंस ऑफ माइंड, एक ऐसी स्टेबिलिटी, एक ऐसी साइलेंस जो आपको वक्त की चुनौतियों का उत्तर देना सिखाती है। जिसने ठीक बाबा से बात की है, जो ठीक देह से न्यारा हुआ है, ठीक से बाबा से कनेक्ट हुआ है, कैसे पता चले? उसकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति अनुसार किसके साथ क्या व्यवहार करना है उसको समझ आ जाएगा। कहीं कहीं समस्याओं का सामना करना होता है, पर हर जगह सामना चलता, हर जगह भले राजयोग के द्वारा सामना करने की शक्ति आती है, पर हर जगह सामना नहीं करना होता, बहुत जगह सहन करना होता है, झुकना होता है, मरना होता है, मिटना होता है। और कब सहन करूं, कब सामना करूं, ये कौन बताने आएगा मुझे? घड़ी घड़ी तो न दीदियों से पूछ सकते अब क्या करूं, हर एक बात की डिटेल कहानी का उत्तर तो मुरलियों में भी नहीं आता है कि सुबह अमृत वेला आप उठे और दूसरा कोई बहुत बेचैन और दुखी हो गया, क्या किया जाए? 100 तरह की वैरायटीज है इसमें, तो 1000 तरह के अलग अलग उत्तर होते हैं। इस सब का आधार क्या है? जो हम समय समझ सकें और उस समय का रिस्पांस समझ सकें कि अब मुझे चुप रहना है या अब मुझे एकदम अथॉरिटी से उत्तर देना है। दोनों ही जरूरी है। वक्त अनुसार ये नहीं कहा जाएगा सदा हर बात में चुप रहना, भाई कुछ मत बोलना, कोई जो मर्जी करे, ये भी नहीं है। पर ये भी नहीं कि हर एक को हर बात का दबा के जवाब देना, दोनों ही नहीं है। दोनों के बीच की एक स्थिति है। हमने देखा है जिन्होंने ठीक योग बल कमाया है उनके व्यवहार में बहुत एप्रोप्रिएट बैलेंस होता, युक्तियों से चलते, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, दोनों जरूरी है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है न सिर्फ बैठ बैठ कर योग करना, लेकिन देह से न्यारेपन का अभ्यास बार बार करना। जितना अधिक हम देह से न्यारे होते जाएंगे उतना हालात से न्यारे होंगे। जैसे बाबा उदाहरण दिया करते हैं, अव्यक्त मुरली में भी परसों बाबा ने कहा, कल की जो अव्यक्त मुरली थी, जितना ऊंचे स्थान पर हम चले जाते हैं उतना नीचे का सब कुछ क्लियर दिखता है और ओवरव्यू मालूम पड़ता है, और जब नीचे होते हैं आधा अधूरा दिखाई पड़ता है। तो जब हम किसी हालात और समस्या में मन और बुद्धि से डूब जाते हैं, खुद ही उसका हिस्सा बन जाते हैं, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। मॉडर्न मैनेजमेंट वाले भी एक भाषा बोलते हैं जो हमारे राजयोग पर ठीक न सिर्फ लागू होती है लेकिन राजयोग का प्रोडक्ट है। वो दो बात बोलते हैं कि या तो आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होंगे या आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होंगे। इफ यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू कांट बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपकी बुद्धि में समस्या 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 है तो हल नहीं निकल सकते, पहले उसको एक फुल स्टॉप देना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना होगा। तभी तो जमाने में रिवाज है कि समस्या किसी दूसरे की, सॉल्यूशन कोई और दे रहा। घर का झगड़ा सरपंच के पास ले जाते, अरे भी लड़े घर में सरपंच क्या करेगा, वो न्यूट्रल पर्सन है, थर्ड पर्सन है। कोर्ट के जाकर के केस देखो, घरों का आटा दाल चावल, घरों का तू तू मैं कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं। अरे घर की बात घर में सुलझा लो ना। नहीं, दोनों की बुद्धि में समस्या घूम रही है, सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तीसरा उससे बाहर है तो वो उसका हल बता सकता है। तो बाबा ने हमें राजयोग में एक चमत्कार दिया, मिरेकल, हम अपनी ही समस्या से खुद बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए बाबा ने हमें न्यारापन सिखाया है, देह से न्यारा, संबंध से न्यारा। संबंध यानी जो भी पार्ट प्ले हो रहा है, पति पत्नी, मम्मी डैडी, बेटा बेटी, ऑफिसर सबॉर्डिनेट, पड़ोसी, सास बहू, देरानी जिठानी, पार्ट है ना, रोल है ना, संबंध है ना। तो देह से न्यारा, संबंध से न्यारा, पदार्थ से न्यारा। पदार्थ क्या है? पदार्थ है हमारी एक्सपेक्टेशंस, एक कार और मिल जाए, ये वाली ब्रांड की नहीं वो वाली, एक इनोवा तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं नहीं फॉर्चूनर, नहीं नहीं ये तो नहीं, ये नहीं और बढ़िया और बढ़िया। ये क्या है? सिर्फ पदार्थ नहीं, पदार्थ में भी चॉइसेस, उसमें भी बहुत सारी रिजिडिटीज। मेरा इसके बिना तो चलता ही नहीं है, बचपन से हमें आदत पड़ी हुई है, हिरे हुए इस बात के। तो राजयोग, रियल योग क्या है? रियल योग जो इस चक्रव्यूह से निकल सके। योग के पहले लेसन का पहला सेंटेंस ही हमें समझाया गया था, तुम अनीता नहीं हो, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, पहला पाठ। तो मैं आत्मा 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 की धुन लग जाए। बहुत बार मुझे इस पर बहुत डीप विचार चलता है कि ब्रह्मा बाबा को जब पहली बार पता चला तुम आत्मा हो। क्या किया बाबा ने, कैसे इतना महापरिवर्तन हुआ। बाबा ने लिख लिख कर डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ब्रिजेंद्रा दादी ने बताया, जितने रिलेशंस बाबा जानते थे, जिनके प्रति बाबा का झुकाव लगाव लौकिक में रहा हुआ होगा, एक एक संबंध से बाबा पूरी डायरी भर देते थे। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, मेरा विचार चला। इतनी महान हस्ती ब्रह्मा, लिखकर प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी बच्चों की तरह। डायरी उठाओ, कॉपी पेन लिखो, बैठ करके ऐसे ही बैठ जाते बाबा, यूं ही सोच लेते, जसोदा आत्मा, जसोदा आत्मा, जसोदा आत्मा। क्यों लिखा बैठ बैठ कर, हमको दिखानी थी क्या बाबा ने वो डायरियां? क्या कारण था? सोच के पक्का नहीं होता है क्या? लिखने की क्या जरूरत थी? वही पूछ रही हूं। प्रैक्टिस तो यूं बैठ के नहीं हो सकती। राजयुग में तो हम समझते हैं कि ऐसे बैठो तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, लिखने में तो थोड़ा ध्यान बंटता है। अच्छा, बाबा साइन कर रहे थे कि मैं आत्मा हूं जी। मनसा वाचा कर्मणा, क्या तीनों रूप से हो गया? अच्छा, नहीं बाबा बोलते नहीं थे सच में? नहीं, इसके पीछे और साइकोलॉजी है। कोई भी बात को जब हम लिखने लगते हैं तो लिखने की स्पीड सोचने की स्पीड से कई गुना कम होती है। जैसे ही आप लिखेंगे मैं एक आत्मा हूं, अंदर आप चार बार बोल सकते हैं उतनी देर में, और अंदर एक गैप मिलता है कि जो आप लिख रहे हैं उसको आप विजुअलाइज कर सकें, पिक्चराइज कर सकें। अपने राजयोग में सिर्फ सोचने का महत्व नहीं है, संकल्प का नहीं, संकल्प के साथ पिक्चर का, विजन का, दृश्य का महत्व है। जब तक उस चीज का एक दृश्य निर्माण नहीं होता है, आप पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं होते। मैंने लिख कर देखा, अब लिखते हैं जसोदा एक आत्मा है तो चित्र बनेगा, जसोदा एक स्त्री, उसके माथे में आत्मा, जसोदा एक आत्मा है। मैंने जैसे प्रैक्टिस किया, बाबा तो और हायर है, तो एक स्केल्टन दिखा स्त्री के बजाय, उसके माथे पर स्टार, फिर लिखा जसोदा एक आत्मा है, स्केल्टन गायब, अब लाइट का फिगर, एक आत्मा है, फिर लिखा जसोदा एक आत्मा है, लाइट का फिगर भी गायब, एक स्टार, जसोदा एक आत्मा है, स्टार भी ऊपर, सितारों की दुनिया में मैं भी एक स्टार, वहां दोनों भाई भाई, जसोदा एक आत्मा है, स्टार की यात्रा, एक जर्नी पर, एक बच्ची के शरीर में आया, फिर ऐसे 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 बड़े होके जसोदा बना। ये जसोदा कुछ नहीं है, कवर है, ये आत्मा है। एक जर्नी है लिखने के साथ, एक गैप है माइंड को, एक चित्र बनाने के लिए टाइम मिला है। इसलिए जो भी भाई बहने कमेंट्री कराते हैं, वो सिर्फ पाठ नहीं पढ़ देते कि चलो सारे सीधे बैठो, सोचो मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु माथे में चमक रही हूँ, परम धाम से आई हूँ, परम धाम, पाठ थोड़ा ही पढ़ते है। पाठ पढ़े तो थोड़ी देर में या सो जाए या भाग जाए, गैप डालते हैं, चित्र बनाने का टाइम देते है। तो बाबा ने कितना अभ्यास किया, वो अभ्यास रंग लाया व्यवहार में, इतना रंग लाया कल की लौकिक युगल आज उनको बच्ची दिखती है। उन्होंने भी जसोदा माता ने इतना अभ्यास किया, कल का लौकिक पति आज बाप दिखता है, नॉट ए जोक, मजाक नहीं है। सुनने कहने में बात सिंपल लगती है, लेकिन बहुत बड़ा तप है। मेरे बाबा मीठे बाबा कहके उनकी गोदी में जाती है और मेरी बच्ची मीठी बच्ची कहके बाबा उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। और कभी ये युगल रहे होंगे, लाखों माइल दूर तक भी वो भासना तक भी नहीं। ये था व्यवहारिक स्वरूप। निर्मल शांता दादी ने एक बार बताया कि बाबा ने मुझे कलकत्ता में पत्र लिखा, बच्ची बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, तेरी अम्मा थी मेरी बीवी थी मर गई दोनों हलवा खाएंगे। जसोदा माता ने शरीर छोड़ा था, इतने डिटैचमेंट, ये चाहिए कदम कदम पर अभ्यास, न्यारेपन का अभ्यास। बैठकर जैसे ही लाल बत्ती से सफेद बत्ती होती है, तो बहुत भाई बहनों ने पुरानों ने भी ये समझ लिया है कि योग भी कोई बत्ती ऑन ऑफ जैसा है। लाल लाइट हो तो ऐसे, सफेद बत्ती हो तो ओम शांति, पूरा हुआ काम, कहानी खत्म, परम धाम से पटक नीचे आ जाते हैं, पटक कहना पड़ता, साइलेंस में बाहर जाना, आपस में बात नहीं करना, कहने की क्या जरूरत है। अगर ठीक से आत्मा हो गए थे देसी न्यारे, तो आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, बोलने में जोर लगना चाहिए, चुप कराने में जोर लगता है, क्योंकि अभी तक भी स्त्री पुरुष मम्मी डैडी बने हुए हैं। घर जाते तक अभ्यास होता जाना चाहिए, बेटा सामने आए जोर लगे सोचने में, ये बेटा है, अच्छा अच्छा बेटा, मैं मम्मी चल एक्टिंग कर लेते हूँ, तो मैं आत्मा, ये भी आत्मा, ना मम्मी ना डैडी ना बेटा ना बेटी। अगर ठीक आत्मा हो गए तो संबंध खींचेगा नहीं, मैं चमड़ा नहीं हूँ, मैं ये हड्डी मांस नहीं हूँ, मैं इससे न्यारी वस्तु हूँ, अलग टुकड़ा हूँ, मैं आत्मा न्यारी वस्तु, बिल्कुल उसका पहला इम्पैक्ट आना चाहिए। संबंध का भान न खींचे। एक युगल की छोटी सी बात सुनाती हूँ। दोनों आते थे पहले, फिर भाई जी कमाने लगे, माता बार बार रिपोर्ट करने लगी, पवित्रता के लिए बहुत तंग करते बहुत तंग करते बहुत तंग करते, हमारी बुद्धि भी माता के फेवर में जाने लगी, हाँ भाई भाई को ऐसे नहीं करना चाहिए, बिचारी सहन कर रही है, ये है वो है। एक दिन दोनों आ गए, उसने फोन किया, ये आना चाहते है थोड़ा इनको समझाना, भले आए ना ठीक है। और आकर के भाई ने कहा, पहले मैं बात शुरू करता हूँ, हमने कहा जरूर करो, कहते बहन जी मुझे पवित्रता से कोई ऐतराज नहीं है, भले ये पवित्र बने, पर इसको पूछो पवित्रता का अर्थ पता है। आज भी अपनी देरानी से रोज लड़ती है, अभी भी नए नए फैशन के कपड़े मांगती है, किटी पार्टियों में सज धज के जाती है, समोसा पकोड़ा सब खा लेती है, हर दिन नई नई चीजें चाहिए, झगड़ा पूरा करती है, तो बाकी पवित्रता किसको कहते हैं। क्वेश्चन उसका ठीक था कि गलत था, बाकी पवित्रता किसको कहते हैं, सब कुछ करना, बाकी पवित्रता कहते क्यों इतना सजती है, क्यों इतनी ड्रेसें खरीदती है। व्यवहारिक स्वरूप, लोग लॉजिकली देखते हैं ना। एक माता ज्ञान में बहुत पुरानी चलती थी, उसकी बहू ने आके बताया, बार बार के ज्ञान में नहीं चलती, अति नहीं, पतित बनती है, पवित्र नहीं रहती, दीदी इसको समझाओ। वो आके बात करती है, दीदी ये माताजी मेरे हाथ का तो नहीं खाते, बाजार का भी नहीं खाते, पर जो अपना बनाती है, कभी पकोड़ा बना रही, कभी समोसा बना रही, और इतना इतना खा जाती है। क्यों? मैंने बनाया, फिर बाहर तो कहीं खाना नहीं। जिस दिन समोसा बनाएगी, 4 समोसे खाएगी। तो कैसे कहे कि इन्होंने स्वादों को जीता, और मेरे को कहती तू पति ते तू हाथ मत लगाना। व्यवहारिक स्वरूप में पतितपना किसको कहेंगे? उसके हाथ लगाए से तो चीज उतनी अशुद्ध नहीं होगी जितना आपके उसको पतित समझ लेने से आपका भोजन अशुद्ध हो जाएगा। कोई आपकी चादर पर बैठ गया, आप गुस्सा कर रहे हो, टॉयलेट जाके नहाते नहीं हो, फिर भी मेरे बेड पर बैठ गए हो, अभी चादर धोनी पड़ेगी, तुमको धोनी पड़े तो पता चले, अरे उसके बैठने से उतनी अशुद्ध नहीं हुई जितना आपके उस क्रोध से, उस नफरत से घर के सारे मॉलिक्यूल्स अपवित्र हो गए, सारी हवाएं दूषित हो गई, आपके हृदय में जो नफरत के बीज थे उसने सामने वाले के अंदर अभिमान हर्ट कर दिया, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसका क्रोध जागृत हो गया, उसके हृदय में आपके लिए प्यार समाप्त हो गया, आपकी संस्था के लिए, ज्ञान के लिए विरोध पैदा हो गया, तो किसको कहेंगे आपने धारणा पालन की? ठीक है, आपकी धारणा अच्छी है, आप शुद्ध खाते हो, अशुद्ध न छुए, भले युक्ति से किसी ने छू भी दिया, बहू कहते हो मम्मी गलती होगी, ना बेटा कोई बात नहीं, नहीं अब आप कैसे खाओगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भले नहीं खाया, युक्ति से साइड में रखा, पर उसका स्वमान तो नहीं गिराओ ना। आपकी पवित्रता में नफरत करना तो भगवान ने कभी नहीं सिखाया था, आपकी शुद्धि में क्रोध तो भगवान ने कभी अलाउ नहीं किया था। इसलिए हम इन चीजों के ठीक मायने समझें, और सबसे बड़ी बात पहले अपने जो आंतरिक आकर्षण है उन पर तपोबल यूज करें, योग बल यूज करें, ज्ञान बल यूज करें। मोटी धारणाएं करना तो आजकल इस ईश्वरीय जीवन की ABC का भी A माना जाता है। ब्रह्मचर्य की पालना, शुद्ध अन्न, रोज की मुरली, अमृत वेला, देखा जाएगा परिणाम क्या है। अब आप अपने घरों में अवतार दिखने चाहिए, प्रेम के अवतार, शांति के अवतार, सुख के अवतार, आनंद के अवतार, प्रभु प्यार का अंदर इतना आनंद कि कोई भी समस्या आपको दुखी न कर सके। एक तरफ हमने सब संबंधियों को ज्ञान सुनाया, मुझे भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ाते हैं, चलो आप भी भगवान से मिलो, विनाश होने वाला है, नहीं तो पछताओगे, और हमारे घर में कोई नुकसान हो गया, हम रो रहे हैं और वो हमें समझा रहे हैं, धीरज धरो, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, 4 पैसे का ही नुकसान हुआ और आ जाएगा, किसी संबंधी का कुछ नुकसान हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई बीमारी आ गई, उसको कोई तकलीफ बड़ी वाली डिक्लेयर हो गई, और हम ही डरे घबराए रूठे टूटे, और जिनको ज्ञान सुनाया था वो इतने नहीं घबराए हुए। क्या प्रमाण है मुझे भगवान मिला? वो भगवान मिला है, मैं तो हमारे में से मीरा ढूंढते हैं, वो हमारे में से सूरदास ढूंढते हैं, जिसने एक बार कृष्ण की छवि देख ली, उसके बाद कहता है बस, एक बार इतनी सुंदर मोहिनी मूरत देखी, अब और कुछ देखना नहीं, आंखें फोड़ ली। उसने तो आंखें फोड़ ली, हमने परम सत्य को स्वयं धरती पर अवतरित होते देखा, उससे नजरें मिलाई, रोज उससे मिलते हैं और मॉल्स में जाकर के जूते कपड़े के डिजाइन भी ढूंढते हैं, ये ब्रांड, ये डिजाइन, ये कलर कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा पसंद है, कौन सा नहीं। फिर किसी देहधारी पर हमारी दृष्टि वृत्ति भी खराब हो जाती है कभी कभी, बेटे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता है, बेटी की यादों में आंसू आते हैं, और हमने तो परम सत्य देखा है। ये बातें अपने को पढ़ानी है, वापस पढ़ानी है, कर्म क्षेत्र पर जाकर अभ्यास करना है। छोटा सा बच्चों का गीत बहुत अभ्यास करना है उस पर, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। सुना हुआ ना, बच्चों का गीत बना है, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा। कोई ज्ञान में चलने वाला मेरा लौकिक संबंधी हो, न चलने वाला संबंधी हो, बैठ बैठ के सीन बनाओ। ज्ञान में चलने वाला है तो दो दो जने रोज जरूर 5 बार 3-3 मिनट दृष्टि योग किया करो। दृष्टि योग करके क्या देखो, सामने वाले को जब देखो समझो चमड़ा उतर गया, एक स्केलेटन में स्टार है, क्योंकि ये जो चमड़ा है ना, इसमें बहुत रोला है, बहुत, इसके अंदर एज दिखती है, इसके अंदर मेल फीमेल दिखता है, रिलेशन दिखता है, कलर कास्ट पोजीशन एजुकेशन दिखती है। हम पंजाबी होते हैं जी, हम पंजाब के होते हैं जी, हम राजपूत होते हैं जी, इसी में ही है, चमड़े में ही सब कुछ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी मम्मी है, ये डैडी है, ये मेरा विरोधी है। दो दो जिन्हे सामने बैठ के स्पेशल देखो, मांस उतर गए, अंदर स्केल्टन है, उसमें स्टार है, ये सामने वाला मेरा भाई है, ये भी स्केल्टन में स्टार है, दो आजाद पंछी पिंजड़े में फंस गए। मेरा भाई तू भी फंसा पड़ा, मैं भी फंसा पड़ा हूँ, मन में बोलना बस थोड़े दिन रह गए मुक्ति के, उड़ चलेंगे अपने वतन, पिंजड़ा टूटने वाला है, मर जाएगा ये। ऐसे बात करो, बार बार देखो, सामने वाला फलाना फलाना नहीं नहीं, ड्रामेबाजी है सारी, ड्रामेबाजी तो है। जिसको बेटा कहते हैं, कब से बना बेटा, कब से, कब से, 15-20-30-40 साल जितनी भी आयु का आपका बच्चा होगा उससे पहले क्या था, कहते मेरा बेटा मेरी बेटी, कौन मम्मी कौन डैडी, बेटा बेटी पैदा कर सकते है, अब तो हड्डी मांस का लोथड़ा पैदा करते है। उसमें बेटा तो शिव बाबा का प्रवेश करता है, क्यों झूठ बोलते है, मेरा बेटा तो शिव का बेटा है, हम सब उसके पुत्र है, भाई भाई है। अगर शिव पुत्र ज्योति उसमें न प्रवेश करता, कौन मेरा बेटा बेटी बनता, वो तो हड्डी मांस था, वो तो शव था। तो सत्य क्या है, सत्य पर बुद्धि को टिकाना, ये योग का व्यवहारिक स्वरूप है। पर ऐसा भी नहीं जो जाके सबको बोलने लग जाओ तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मैंने ऐसी गलती की थी। नया नया ज्ञान मिला ना, आत्मा आत्मा बड़ा जोश चढ़ा, तो वो जमाना तो फोन भी नहीं होते थे, लेटर का जमाना था। मैं यहाँ आई मधुबन पहली बार, बहुत जोश चढ़ा हुआ था, अपने फादर को लेटर लिखा, उसमें लिखते होते थे पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी लिखा ही नहीं हमने, भाई लिख दिया उनको। बाहर एड्रेस में श्री लिखते थे, श्री के बजाय हमने मिस्टर लिख दिया, क्योंकि मुरलियों में सुना हुआ था श्री कोई नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई होते हैं, वापिस घर गई, मुझे तो लगा उनको बहुत अच्छा लगेगा, कितनी ऊंची बात है, इतनी डांट पड़ी। यही सिखाती है ब्रह्म कुमारियां तेरे को, मैं तेरा बाप तेरा भाई हो गया हूं, मेरे वाली गलती नहीं करना। अंदर से समझो, अगर अंदर से मैंने ठीक समझा होता ना, इससे सिद्ध होता अंदर से ठीक नहीं समझा था, बस ऊपर का जोश था। अगर अंदर से ठीक समझा होता कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, इस थोड़े पीरियड के लिए मेरे पिताजी की एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक्टिंग तो बेस्ट की जाती है ना, एक्टिंग में थोड़े ही डिस्क्लोज कर दिया जाता है, करते हैं डिस्क्लोज क्या। स्टेज पर अगर राम और सीता अंदर से दोनों सगे भाई हो, तो स्टेज पर डिस्क्लोज करेगा क्या, तुम दिखती तो सीता है तो मेरा भाई, वो तो उनकी रामलीला फ्लॉप हो जाएगी। तो ये युक्ति है, अंदर से दृढ़ 100% आत्मा आत्मा भाई भाई, कोई हर्जा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ में एक युगल एक भाई बैठकर उत्तरा दीदी से बात कर रहे थे, वो बात करके गए नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल स्माइलिंग फेस। उत्तरा दीदी कहने लगे, सुना क्या बात कर रहा था? कहा नहीं दीदी सुना नहीं। कहते इसका बेटा वो विज्ञान में चला हुआ था, अभी अभी चला था विदेश में, बहुत बड़ी जॉब लगी, और कुछ दोस्तों के संग कहीं गया, वहां दोस्तों ने जबरदस्ती किया तैरने के लिए, उसको तैरना प्रॉपर नहीं आता था, जबरदस्ती किया उसको, दूसरी लाइफ जैकेट होती क्या होती है वो भी पहना दी, और पानी में कूद गए, उसकी जैकेट फट गई, पानी में डूब गया, और ऐसा डूबा जो लाश भी बहुत मुश्किल मिली, और उसकी लाश कई दिनों बाद ताबूत में डाल करके कहते आज वापस आई है, और उसके संस्कार की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और दोनों ही युगल बिल्कुल स्टेबल है। कहते मैं उनको थोड़ा सा सांत्वना दे रही हूँ, अच्छा ऐसे, वो कहते नहीं बहन जी कुछ नहीं, नहीं नहीं बाबा जो करता, आत्मा तो अमर है ना, शरीर से आत्मा तो तभी निकल गई थी, बाकी ये तो पांच तत्व हमें मिला है, हमने अपना फर्ज पालन करना। इकलौता बेटा, इससे पता चलता है कितना एक्यूरेट आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया होगा, पालना ठीक की, पढ़ाया, विदेश भेजा। कोई कोई फिर इस बात को दूसरे रूप से लेते हैं, बच्चों का ध्यान रखना ही छोड़ देंगे, खाना ही नहीं बनाना है, हम तो आ गए मधुबन सेवा करने, अच्छा आपके बच्चे थे, खाना कौन खा लेंगे, जहाँ खाना होगा खा लेंगे। उसको नहीं समझो हमने कोई ज्ञान का बड़ा रूप दिखा दिया, जहाँ फर्ज है ठीक पालन करेंगे, लेकिन जहाँ डिटैच होने की जरूरत है वहाँ ऐसे डिटैच हो जाएंगे जैसे कि याद भी ना आए, कोई था भी हमारा रिश्तेदार मालूम भी नहीं पड़े। अंदर से रस्सियां काटनी है, ऊपर से तो बाबा कहते तोड़ निभाना है, हम अंदर की रस्सियों को कम चेक करते हैं, इसलिए हर दिन के योग की एप्लीकेशन साथ साथ चेक करनी चाहिए कि मेरा संबंधियों को फोन करने का कितना दिल करता है, कितना वैरायटी स्वादों में दिल करता है, कितना ज्यादा सोने का दिल करता है, कितना कोई निंदा कर रहा है तो सुनने का दिल करता है, कितना मेरा पर चिंतन करने का दिल करता है, जहां जहां दिल करता है, ये बड़े बड़े विकारों के प्रतिरूप है। कहीं ईगो एक्सप्रेस हो रहा है, कहीं हमारा लोभ एक्सप्रेस हो रहा है, कहीं हमारी अटैचमेंट्स एक्सप्रेस हो रही हैं। दिल करता है फोन करूं रोज बेटे को, जिन जिन के बच्चे विदेश में गए हैं बाहर रहे हैं, रोज बस दो फोन करते हैं, बस दो रोज, एक तो कम से कम शाम को इस टाइम आया करो, नाना वो तो विदेश से फोन का टाइम है। अच्छा ठीक है ना, रोज एक फोन पौना घंटा, ठीक है ना? उसमें फोटो दिखाएंगे, बच्ची कितनी बड़ी हो गई, घर में ये क्या खा रहे हैं, फालतू। इसको निभाना कहते है, इसको निभाना कहते है कि तुम मुझे देख मैं तुझे देखूं, रोज तुम मुझसे बातें कर मैं तुझसे बातें करूं। नहीं, आशिक माशिक उधर बनना है, निभाने मात्र, जहां जब जैसा जितना जरूरी हो बस उतना। ये नहीं कोई किस संबंधी ने अगर पूछा आपको मेरी याद नहीं आती, आदत है, खास पंजाब में रिवाज है, आपको मेरी याद नहीं आती, और सामने वाले ने अगर कह दिया नहीं आती, इतना दिल टूटता है। अरे दूसरे को अपनी यादें दिला रहे हो और राजयोग का फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद कर, फार्मूला ये है। और फोन नंबर्स की लिस्ट हमारे फोन्स में बढ़ती जाती है, नई नई दोस्तियां, बाहर नहीं तो ब्राह्मणों से सही, लौकिक वाले तो विकारी हैं, यहाँ तो अच्छे, आज अच्छे लगे कल इनका भी तो काम बाकी है पवित्र बनने का, संपूर्ण बनने का। पहले लौकिक के अवगुणों को माइंड में रखकर इधर उधर फैलाते थे, अभी अलौकिक से दोस्तियां हो गई तब अलौकिक के अवगुण बुद्धि में रखकर यहाँ वहाँ प्रसाद बांटने चल पड़ते हैं। हम हैं तो राजयोगी। बी केयरफुल। राजयोग से शक्ति मिलती है, विकर्म विनाश होते हैं जरूर, लेकिन अगर कर्म में अटेंशन नहीं रखा गया तो न सिर्फ कमाया हुआ योग बल लीक हो जाता है, लेकिन कई गुना और विकर्म बन जाते। बाबा के तो गुण बहुत गाए, बाबा आप जैसा मीठा प्यारा कोई नहीं, फील भी किया, और कोई कोई आत्माओं के अवगुण यहाँ वहाँ बहुत फैलाए, भले कितना भी सत्य था उसमें, पर अवगुण फैलाने की श्रीमत भगवान ने कभी नहीं दी। तो अवगुण फैलाना श्रीमत का उल्लंघन है, तो जो श्रीमत का उल्लंघन करे तो सोचो, आप सबके नजदीक तो उधर वाघा बॉर्डर है, जो देशभक्त कितना मर्जी अच्छा हो पर बॉर्डर क्रॉस करे तो क्या हाल होगा, जानते ना क्या गति होगी। मना करने के बावजूद भी, भाई नहीं जाओ नहीं जाओ, उधर उस पार नहीं जाओ, रुक जाओ, जाऊंगा, क्या होता है, सारे अपने भाई भाई हैं, तो उल्लंघन है ना। तो मर्यादा रेखा है हमारी, उसके अंदर रहना, यही योग का व्यवहारिक स्वरूप है। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो एक व्यक्ति रोड्स पर छड़ी गोल गोल घुमाता घूम रहा था, गोल गोल, किसी ने रोका, भाई रुक जा, किसी को लग जाएगी। कहता आजाद भारत का नागरिक हूं, अब गुलाम थोड़ा ही है, हम तो आजाद हो गए, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। उस भाई ने कहा, आप आजाद जरूर हुए हो, लेकिन आपकी आजादी वहां समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तो हम राजयोगी हैं, सुख और आनंद में पलते हैं। बहुत बार मर्यादाएं फालतू लगती है, मेरा सुख और आनंद वहां कैंसिल हो सकता है जहां मैंने सामने वाले के सुख और आनंद का ध्यान नहीं रखा। ईश्वरीय मर्यादाएं जीवन को आसान बनाती है, मैंने उस पटरी पर चलने को जीवन का बोझ माना। बहुत बार सेंटर्स पर जो भाई बहने आते हैं, हम उनको आपस के नियम और मर्यादाएं बताते कि यहाँ वालों के नियम मर्यादाएं क्या हैं। बीके भाई बहने आपस में बिजनेस नहीं कर सकते, बीके भाई बहने आपस में धन का लेन देन किसी भी रूप में नहीं कर सकते, कर्ज ले नहीं सकते, आपस में कर्ज दे नहीं सकते, एक दूसरे के घरों में आना जाना, खाना पीना नॉट अलाउड, एक दूसरे के यहाँ रिश्ते नहीं जोड़ सकते कि दो युगल ज्ञान में चलते हैं, मेरी बेटी कच्ची पक्की चलती, तेरा बेटा कच्चा पक्का चलता है, चल बाहर कहाँ रिश्ता ढूंढेंगे, तेरा बेटा मेरी बेटी शादी करा देते हैं। खुद पवित्रता के लिए मारे खाई, आज दोनों की शादी के लिए लड्डू बांट रहे हैं और कार्ड बांटने बीके फैमिली में जा रहे हैं। भूल जाते हैं कि पवित्रता का वही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। अगर नियम बताएं कि ये नियम है, लिखित नियम है कि बीके भाई बहने आपस में इस तरह के शादी ब्याह के संबंध नहीं जोड़ सकते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं। और जहाँ कर लेते हैं, कल को बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है, वो भी लेके बहन जी के पास आते हैं। अरे हमने तो समझा था बीके, और बीके से समझ लेते हैं जैसे स्वर्ग के देवता होंगे, हमारी बेटी तो वहाँ पूरी लक्ष्मी बन के राज करेगी, ये नहीं पता बेटा तो विकारी बनना चाहता है, उसमें बाकी सारे अवगुण भी होंगे, हमें क्या मालूम था आपका बेटा ऐसा निकलेगा। हमने तो बीके समझा था, अरे बीके समझा था तो विकारों की कहानी क्यों शुरू की बीके में। गुह्ये गति है, उस गुह्ये गति के लिए कदम कदम ऐसे वाले व्यवहार निमित्त बहनों से वेरीफाई कराए जाने चाहिए, जिससे हमारे परिवारों में ठीक व्यवस्थाएं बनी रहें, ठीक सुकून बना रहे, और व्यवहारिक स्वरूप के लिए ट्रैफिक कंट्रोल अवश्य यूज करो। ट्रैफिक कंट्रोल, एक घंटे में एक मिनट साइलेंस, दिन में 5 बार 3 मिनट साइलेंस विधिवत नियम पूर्वक करो, कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। हजारों अनुभव हैं इसके, घरों का वायुमंडल बदलने लगता है, और व्यवहारिक स्वरूप के लिए भोग लगाना कभी मिस नहीं करो, कभी नहीं मिस करो। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस घरों में भोजन के शुद्धिकरण के लिए 3 बार में से कम 1 बार विधिवत भोग अवश्य लगाया जाना चाहिए। अमृत वेला तो मरते मरते भी करना चाहिए, मरते मरते भी करना चाहिए। मनमोहिनी दीदी कहा करते थे, राजयोगी ब्राह्मणों के लिए सुबह 4 बजे के बाद बिस्तर कांटों का बिस्तर होता है, 4 बजे से पहले वाली नींद आपकी थकावट उतारती है, बीमारियां दूर करती है, 4 बजे के बाद वाली नींद थकावट बढ़ाती है, बीमारियां बढ़ाती है, और वही टाइम है वरदाता से मिलने का, जहाँ चाहा वहाँ रहा। चाहना प्रबल कर दो कि ये ईश्वर आज्ञा है, किसी हालत में भी मिस नहीं होनी चाहिए, तो जरिए निकल आएंगे, विधियां बन जाएंगी, उपाय निकल आएंगे। और कैसा भी संबंधी हो, कैसा भी, उसके साथ व्यवहार में क्रोध का त्याग कर दो। जितना पवित्र बनना महान बलिदान और त्याग है, ब्रह्मचर्य जो पालन किया, समाज उसे बहुत ऊंची नजरों से देखता है, लेकिन हमारा क्रोध भी क्षमा योग्य नहीं है। बाबा का नाम बदनाम करता है। ध्यान रहे, कैसा भी संबंध, सामने वाले का कैसा भी दुर्व्यवहार, क्रोध करने की परमिशन हमें श्रीमत नहीं देती है, तो मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा, इसका दर्शन कहाँ होगा? कहाँ होगा? जो लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं वहां, जब परिस्थितियां फेवरेबल है वहां, वहां तो सारे ही शांत होते। नहीं, जब परिस्थितियां अगेंस्ट है, लोग दुर्व्यवहार करते हैं, हमने भला किया वो बुरा करते हैं, हमने उन्हें धन का सहयोग दिया वो हमारे धन के नाम पर धोखा करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा लूट जाते हैं। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस राजयोगी शांति का अवतार होना चाहिए, प्रेम का अवतार होना चाहिए, क्षमा सागर समान बड़े दिल की क्षमा। हमने अचल दीदी को देखा, आप सब ने देखा, चंद्रमणि दादी को देखा, अपनी दीदियों को देखा, विशाल हृदय, बड़े से बड़ी गलतियां करने वालों को भी उन्होंने गले से लगाया, क्षमा ना सिर्फ क्षमा दिया, वापिस प्यार दिया, रिगार्ड दिया परिवारों में। ये व्यवहार का रिजल्ट राजयोग द्वारा तब आएगा जब हम लाना चाहेंगे। हमने शायद समझा ही नहीं है कि धोखा देने वाले को भी प्यार देना है, दुश्मन को भी गले लगाना है। व्यवहारिक क्षेत्र पर नहीं समझा, मुरलियों के पॉइंट रिपीट कर सकते हैं। जहां व्यवहार में आ जाए, पास्ट में जिसने बहुत बड़ा धोखा दिया, आ जाए नजरे मिलाऊं, उसको देख के दुख न रिसीव करूं, यहां से सुख का शावर चला जाए, तो समझ आएगा सुख के सागर से संबंध जोड़कर मैंने आत्मा ने सुख और आनंद धारण किया। योग क्या है? सुख के सागर से मिलन है ना, तो सागर अंदर समाता है ना, आनंद का सागर अंदर समाता है ना, प्यार का सागर हम रिसीव कर रहे हैं ना, प्यार का शावर, प्यार का शावर। बाबा आप कितने प्यारे, कितने मीठे, फिर रोज सुनते हैं, बच्चे तुम कितने मीठे, एक ही मुरली में बाबा कई बार बोल देता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो मिठास अंदर डाल रहा है हमारे, वो रिसीव तब होगी जब हम समझे सप्लाई करना है। माल किसको ज्यादा मिलता है? जो सप्लाई ज्यादा करता है। एक होलसेलर ट्रकों के ट्रक लाएगा, एक रिटेलर क्या लाएगा, रिक्शा भर के ले आएगा दुकान में। तो होलसेल देना है सुख शांति प्यार, तो महसूस करेंगे व्यवहारिक क्षेत्र पर हम योगी अवतार प्रसिद्ध होकर बाबा का कार्य प्रत्यक्ष करेंगे। हमें नहीं कहना पड़ेगा, हम भारत को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, लोगों के मुंह से अनायास निकलने लगेगा, आप लोग तो दुनिया को स्वर्ग बना दोगे, आप जैसे लोग मिल जाए ना, कमाल हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो बाबा कहा करते थे, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, मेरे जैसा स्वरूप बाहर दिखाओ, बाबा की खातिर हमें बाप समान दिव्य गुणों को प्रत्यक्ष करना है। 2 मिनट साइलेंस करेंगे, एकाग्र होके वतन में जाएंगे, लाइट के शरीर में, और देख आएंगे बाबा फरिश्ता और मेरे प्रकाश के शरीर में कितना अंतर बाकी है। उड़ चलेंगे मिट्टी के शरीर से निकल प्रकाश का शरीर, मस्तक मणि जगमगाती, छोड़ दो देह का पिंजड़ा, उड़ चलो नीले आसमां, देख लो अपने को प्रकाश का एंजल बन, तेज गति से उड़कर चांद तारों को क्रॉस करता हुआ पहुंच गए चांदनी के वतन। जैसे कि सफेद बादलों की चादर बिछी है, फरिश्तों का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला है। अनोखा फरिश्ता ब्रह्मा व्यक्त स्वरूप से मुस्कुरा रहा है। मैंने जैसे ही वतन में प्रवेश किया, प्रकाशमयी काया में बाबा मुस्कुरा दिए। अपने बच्चे को मिलन की खुशी बाबा को भी हो रही है। बाबा बाहें फैलाए स्वागत करते बड़े प्यार से मुझ मासूम बच्चे को सिर पर हाथ फिराकर पुचकार दे रहे, अपना दिव्य प्रकाश दे रहे। और बाबा से नजरें मिलाकर मैं बच्चा बाबा का असीम प्यार अपने में समा रहा हूँ, महान संकल्प बाबा को दे रहा हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपके प्यार का रिटर्न देना है। दुनिया में रहते आपके जैसा प्यार का फरिश्ता, शांति का अवतार बनकर रहना है। बाबा का टच फील करो, बाबा का प्यार और सुख अंदर समाने दो, समाने दो।